राधिकाय सदाए कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय नमः। जन्माष्टमी अभी गई, कृष्ण के संबंध में भी कुछ भक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किए। कृष्ण की अर्थात भक्त लोग उनके स्वयं भगवत्ता की स्थापना करते हैं, उनकी विविध लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसके विपक्ष में भी बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी तरफ से उनके चरित्र की समालोचना करते हैं, जैसे गौड़ीय वैष्णव लोग या ब्रज के जो वैष्णव हैं पल्लवाचार्य गौड़ीय वैष्णव वंश वाले, वो हम लोगों के संप्रदाय से ही निकले हुए हैं। ये लोग कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, कृष्ण स्वयं रस स्वरूप, उनका ये विचार और ब्रज की लीलाएं हैं, उनके कटाक्षों का उत्तर उसमें दे करके इन लीलाओं का औचित्य इत्यादि सिद्ध करना, और भागवत में उनका जो वर्णन चरित्र किया गया है उस पर संपूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, उसकी प्रमाण दे करके उसको पुष्ट करते हैं। दूसरी तरफ में निम्बार्क संप्रदाय वाले और हितहरवंश वाले कृष्ण का केवल मिलन ही का वर्णन करते हैं, उनके पार्थिव भाव को स्वीकार नहीं करते और उनके विप्रलंब या विरह का भी औचित्य नहीं समझते, इसलिए गौड़ीय वैष्णव के प्रति आक्षेप करते हैं कि वियोग न लाया जाए, सब समय राधा कृष्ण में संयोग ही रहेगा। तीसरी बात, वल्लभाचार्य वाले हैं, कृष्ण को बाल गोपाल के रूप से ही उनको मानते हैं, उसी को ही स्वयं भगवान और सब कुछ कहते हैं, इससे बढ़कर के वो और कोई रस नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं रामानु संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय के, जो लोग कृष्ण को भगवान मानने पर भी नारायण का अवतार उनको मानते हैं, कोई कोई उनको क्षीरोदशाई का अवतार मानते हैं। क्यों मानते हैं? कहते हैं कि भागवत में ऐसा लिखा गया, वो दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में दूसरा श्लोक याद है, दूसरा श्लोक है कि तत्र अंशेन अवतीर्णो या श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद का पहला दूसरा श्लोक, जदुवंश में कृष्ण अंश के रूप में प्रवेश हुए। और एते चांस कला अंश, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका अन्य अर्थ करते हैं एते च अंश कला पुंसः, पुंसः कृष्ण माने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं के कृष्ण अंश हैं, ऐसा अर्थ करते हैं एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु, कृष्ण भी अंश और कला हैं, किसके? स्वयं भगवान के, स्वयं भगवान नारायण है। क्या है पहला अध्याय? नहीं, दशम स्कंद का पहला अध्याय दो जदोच धर्मशील नितरान मुनि सप्तम तथा अंशेन अवतीर्ण विष्णु विद्यानि संसन, यहाँ पर विष्णु के 17 अंशेन ये कृष्ण और बलदेव जी पैदा, ऐसा करते हैं। इसको अर्थ दूसरा लगाते हैं कि ये विष्णु के अंश हैं, कौन? कृष्ण और बलदेव जी। और उसमें भी ऐसा अर्थ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंगलाचरण में पहले श्लोक में कृष्ण का कहीं वर्णन नहीं किया गया, ये विष्णु के लिए ही है या नारायण के लिए। अंतिम श्लोक में भी इसी प्रकार से कहते हैं कृष्ण का नाम नहीं है, कहां पर? अंतिम श्लोक में वंदना जो है हैं? वो उसमें पहला जो श्लोक है उस अध्याय का, 12वें अध्याय का, अंतिम अध्याय का नहीं, उसमें पहला या ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता संवंते सवई दिव्य दान उपनिषद ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त जल योगिना। इसमें कृष्ण का नाम नहीं है, नारायण का है, इस प्रकार से लेते। चौथी बात, जो कृष्ण एक महापुरुष थे, वो भी सर्वांश रूप में नहीं, वे बार बार झूठ बोले बचपन से और अंत तक ये झूठ बोलना उन्होंने नहीं छोड़ा। बचपन में अपनी मैया से झूठ बोले कितनी बार, सखाओं से झूठ बोले, इसके बाद में महाभारत के युद्ध में भी झूठ बोले, युधिष्ठिर को झूठ बुलवाया, इस तरह से झूठ बोलने वाले चोर थे। बचपन में मक्खन चुराते थे, पीछे से गोपियों का तीर हरण किया, और भी धर्म का उल्लंघन किया। कैसे? उन्होंने कहा है जैसे मैं लड़ूंगा नहीं महाभारत में, और जब जरूरत पड़ी तो वो लड़ लिए, रथ का चक्र लेकर के लड़े। और विशेष करके अभिमन्यु का वध होने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए दिन में सूर्य चमक रहा था और उसको छिपा दिया चक्र से, और झूठ बोलवा करके धर्म का उल्लंघन करके जयद्रथ का वध करवाया। और इतने छली थे, विश्वासघाती भीम और दुर्योधन में कुरुक्षेत्र में, जबकि कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था सरोवर पर, भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हो रहा था। भाई चलवाओ तो, कोई गया? कौन गया? अभिमन्यु के बाद में सूर्य को ठकवास ढक दिया और अर्जुन से कहा कि इसे मारो, और उस समय में जयद्रथ सामने आते ही चक्र हटा दिया और इस प्रकार से छल से उसको मरवाया। दुर्योधन और भीम में लड़ाई हो रही थी, तो युद्ध का नियम होता है गदा युद्ध में कमर के नीचे कोई नहीं मारेगा, और कृष्ण ने छल से अर्जुन को इशारा करा कि उसे जांघ में मारो, उसका जांघ कमजोर है, और ऐसे ठोक दिया। ठोकते ही कृष्ण ने क्या किया, भीम ने कमर के नीचे जांघ में उसको मारा और लड़खड़ा गया, तब भीम ने उसे प्राण से बच लिया। यही नहीं, जरासंध के बाद के समय में भीम और अर्जुन को ले गया धोखे से, और वहां भीम से जब भी युद्ध हो रहा था, कितने दिन तक युद्ध हुआ? 7 दिन तक, कोई नहीं हारे न जीते। तो कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसे ऐसे चीर दिया, भीम समझ गए और उनसे दोनों टांगों को पकड़ करके और उसे चीर दिया। ये भी कुश्ती में नहीं चाहिए, तो ये छल प्रपंच का तक समय उन्होंने आश्रय लिया, धर्म का उल्लंघन किया, यहाँ तक कि गोपियों के शील धारण तक नंगी किया, उनके साथ में रास लगाया, इसलिए उनके प्रति आक्षेप करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े शस्त्रार्थ इत्यादि भी हुए हैं। उनकी जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो प्रचारक हैं, इन आक्षेपों का उत्तर भी चाहिए, और नहीं तो सुन करके मन खराब हो जाएगा, और मन खराब होकर के लौट आएंगे और भजन में भी शिथिलता आ जाएगी, नहीं भगवान नहीं थे। अंत में ये दिखलाते हैं, अरे वो क्या थे, बचपन में गाय चराते थे और अंत में एक सांप को उन्होंने बसीभूत कर, यह कौन सी बड़ी भारी बात है। अंत में एक बहेलिए ने तीर से मारा, वो उनको पैर में लग गया, मर गए। इसका भी प्रमाण है कि वहां पर जहां साध किया गया था, वहां कौन सा जगह है, द्वारका के समुद्र के में सोमनाथ का मंदिर जहां है, क्या भैरव भैरावल है, वहीं पर सोमनाथ का मंदिर पास में ही है, उसका और भी दूसरा नाम। तो ये सब चीजें हैं, और रहते रहते उनके जदुवंशी सब लड़ कर करके मर गए, ये कौन सी बात है। इन अर्थों का ऊपर उत्तर यदि नए प्रचारक लोग नहीं दे सकेंगे, भजन शिथिल हो जाएगा। इनका भी उत्तर अर्थों का परिपूर्ण रूप से देना है, तब ये भजन परिपक्व होगा। अन्य रूप में प्रतिरूप और व्यक्ति रूप में, प्रतिरूप में इन लोगों का मुख बंद करना, और अनुकूल रूप में उनकी शास्त्र प्रामाणिकता के आधार पर और भजन के बल पर उनके तर्कों का उत्तर और इसकी स्थापना, दोनों की जरूरत है। जैसे घर में घर की नींव यदि ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, बालू के ऊपर में यदि भीत उठाएं, बालू की भीत तो वो अधिक दिन नहीं रहेगी, इसलिए इस प्रकार से विचार करके प्रचारक के लिए इसके लिए तैयार रहना हो। इसी दृष्टि में मैं इनको कहता हूँ, हरिप्रिय जी को उठ करके, और इसका जहाँ तक हो सके जो जानते हैं, इसका पक्ष और विपक्ष की बातों का, पक्ष की बातों का समर्थन और विपक्ष की बातों का खंडन, ऐसा भी लल्लू चप्पू जैसा नहीं। कल हमारे एक वक्ता यहाँ पर बोले तो उसमें कुछ दो चार लल्लू चप्पू की बातें, ऐसा नहीं, एकदम सिद्धांतपूर्ण गवेषणापूर्ण ये सब होंगे, भले विद्वता न रहे कोई बात नहीं, अरण्य महाराज की भांति रहे, कृष्ण प्रजंड नंदन कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व की चरम सीमा है। एक कक्ष व अक्षर नहीं जानते थे, मुकुंद बिहारी विनोद बाबा जी, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कक्ष व अक्षर नहीं जानते थे, किंतु अपने गुरु वर्गों की बात सुने थे। कुछ हमारे लोग हैं कीर्तन में बड़े दक्ष हैं, किंतु जहां भगवत भक्ति की कथा कुछ हुई तत्व की, वहां पर बस न तो कान में प्रवेश करेगा न सुनेंगे, वो बाहर रहेंगे, मन खराब कर देते हैं यदि कीर्तन के लिए न कहा जाए। ऐसा नहीं, सत्विक हो, कीर्तन भी साथ साथ में हो, और साथ साथ में विचारों को लेकर के हम चलेंगे, तब हमारा हृदय सुदृढ़ कृष्ण के प्रति होगा। या क्या सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो, और सिद्धांत के संबंध में आंख बंद करके नहीं रहेंगे, नहीं तो चित्त दृढ़ नहीं बन सकता, चित्त दुर्बल रहेगा, एक हवा के झोंके से ही भक्ति लुप्त हो जाएगी। गुरु वैष्णव सबको अंगूठा दिखला करके चले जाएंगे, इसलिए इन सब सिद्धांतों में भी प्रवेश करना है, और नहीं तो काम क्रोध है दास भैया तार लगे। और नहीं तो ये सब का ज्ञान नहीं रहने से विचारों में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, वैष्णवों को उचित सम्मान हम नहीं दे सकेंगे। क्रोध के वशीभूत होकर के अपने शिव का बाल अपने आप नोचेंगे और भक्ति को सदा के लिए विदा कर देंगे। प्रभुपाद के बाद में एक थोड़ा सा झड़ झंझट आया, आंधी उठी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के बाद में थोड़ी सी एक हल्की सी आंधी आई और उसमें बड़े बड़े पेड़ धुरंधर लोग धाराशायी हो गए और उसी समय खीर और नीर की परीक्षा हुई। खीर नीर माने क्या? दूध और पानी कौन भक्त है कौन है? बाकी सब लोग घर में चले गए, कोई कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, भक्ति का कोई नाम निशाना नहीं रहा। विशेष करके आचार्यों के जाने के बाद में ऐसा ही होता है। इसलिए भक्ति में हम प्रतिष्ठित रहेंगे, वैष्णव को सम्मान यथा उचित देंगे, सिद्धांत में हम कभी भी आलस्य नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति सुदृढ़ रहेगी। चाहे लाख झंझट आए, चाहे जगत पलट जाए, वो भक्ति में स्थिर है। विशेष करके कृष्ण भक्ति के लिए हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की चोट पर कहता है, ये सब हमारे पीछे शास्त्रीय प्रमाण है, हमारे गुरु परंपरा के विचार हैं, उनके सभी विचार जो हैं और विपक्षियों के मुख को मोड़ने वाले हैं। शंकराचार्य जैसे लोगों का मुख बंद कर दिया तो ये सब लोग तो बात ही क्या। इसलिए भजन करने में इन सब चीजों के प्रति रुचि रहे तब भजन होगा। भजन को अपने पैसे अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए साधन मत बनाओ, हरिनाम और भजन को मत बेचो दो पैसे में। त्यागी लोग कुछ लेकर के गुरु सेवा कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं। विशेष खूब सावधान रहे और नाम मात्र के लिए भी वैष्णव अपराध कहीं ना हो, अपने से जो जूनियर है उनको भी सम्मान दो। और बड़े बात हैं तो बड़े की बात ही क्या। यथा योग्य सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव में भगवान है, सबका स्वरूप ही ऐसा है, इसे सम्मान पूर्वक देते हुए इन विचारों में प्रतिष्ठित होकर के भजन करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी कोई आंधी कभी आएगी और जड़ से उखाड़ करके चली जाएगी, उस समय पता ही नहीं रहेगा जैसे कहाँ है। इसलिए आप थोड़ा सा इस पर बोलिए का उत्तर देना, नहीं तो कोई कौन सुनता है।